हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 16, टेक्स्ट नंबर 6। मन की समस्त मलिनता, चंचलता और बुद्धि से समस्त विचारों का परित्याग करके एकाग्र मन के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंह, दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपीका कांता, श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सूति देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। पहले भगवान ने हमें दैवी गुणों के विषय में बताया, और उसके बाद आसुरी गुणों के विषय में बताया कि आसुरी लोगों के अंदर और दैवी लोगों के अंदर कैसे गुण होते हैं। और श्लोक नंबर 5 की जो फर्स्ट लाइन है ना, हमने जो कल पढ़ी थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही गुप्त, एक बहुत ही सीक्रेट बात बताई है। और भगवान ने साफ साफ डिक्लेयर किया, मतलब भगवान ने एक फैसला बताया है, दैवीं संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी माता। बोला कि भगवान ने कहा, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, शास्त्र हो, साधु हो, चाहे गुरु हो, वो एक बात तो इस बात पर सब एक साथ ही, उनका मत क्या है, वो सब ये बताते हैं कि दिव्य गुण, दैवी गुण, दैवी संपदा विमोक्षाय, जो दैवी गुण होते हैं वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, और जो आसुरी गुण है वो बंधन दिलाने वाले। अब ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो बार बार इस लाइन को हमें कंठस्थ कर लेना है कि हम क्यों अपने अंदर ये लाइन, ये जो है ना, दैवी गुणों को क्यों लाएं, हम आसुरी गुणों से क्यों बचें। आसुरी गुणों के विषय में भगवान बहुत कुछ बताएंगे, दैवी गुणों के विषय में भी बताएंगे, लेकिन हम को करना क्या है? अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो दैवी गुणों को अडॉप्ट करना है, अगर बंधन चाहते हैं, बंधन का मतलब होता है आपकी आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहना, यानी कि बंधन ये है शरीर। अगर आत्मा अपने शरीर से निकलकर भगवान के पास चली जाती है तो ये है मोक्ष, और अगर वो इस संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसती है तो इसका मतलब है बंधन। ठीक है, अब मोक्ष का क्या मतलब है, मैं आपको मोक्ष का बारे में बताऊं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का या मोक्ष का मतलब ये है कि और किधर भी नहीं जाना, आपको किधर भी नहीं जाना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे, दूसरी किसी जगह पे नहीं, दूसरा कोई रूप आपको नहीं मिले, ना आपको भगवान का ऐश्वर्य मिले, ना भगवान का सुंदरता, भगवान का रूप, भगवान का सानिध्य, ये सब नहीं, बल्कि क्या, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, जैसे आप रियल में हो वो आपको जगह मिल जाए, उसको बोलते हैं मुक्ति। जब तक वो जगह आप नहीं प्राप्त करते हो तब तक आप बंधन में हो। जैसे अगर किसी बच्चे को हम कहीं से उठा के आए, कोई चोरी कर लेता ना बच्चे को अपने घर में लेकर आए, तो दरवाजा खुला हुआ हो और वो जा भी सकता है, लेकिन वो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि अपनी माँ के पास नहीं जाता, जब तक अपने बाप के पास नहीं जाता, मतलब उसको कैद किया गया है, पूरे संसार में वो कैद है जब तक वो अपने घर में नहीं जाता। उसी तरह हम भी संसार में कैद हैं, बंधन में हैं, जब तक कि हम अपने पिता, अपने भगवान, अपने कृष्ण के पास नहीं जाते। तो यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं कि देखो, आपको मैंने फ्रीडम तो दिया है, लेकिन अगर आपको मेरे पास वापिस आना है दैवीं संपद विमोक्षाय निबद्धायासुरी माता, अगर तुम दैवी गुण अपने अंदर विकसित करोगे तो आप मेरे पास वापस आ जाओगे, अगर आसुरी गुण अपने अंदर विकसित करोगे तो वापस ही संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 6 में हमें बताते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ, द्वौ मतलब टू टाइप के, भूत सर्गौ मतलब जीव की सृष्टियां, यानी कि दो टाइप के जीव हैं लोकेस्मिन्, इसमें मतलब इस लोक में, जो हमने दो पहले पढ़े ना क्षर और अक्षर, उसमें से यहाँ पर संसार में सारे कौन से हैं, क्षर हैं, और जो आध्यात्मिक लोक में है ना वो अक्षर में। लेकिन आज भगवान क्या बताते हैं, दाव भूत सर्गो लोकेस्मिन इसमिन, यानी ये जो भौतिक जगत है उसके अंदर भी दो टाइप के जीव है, कौन कौन से है, भगवान आगे कहते हैं, दैव आसुर एव च, दैव मतलब दैवी प्रकृति जिनके अंदर है, आसुर मतलब आसुरी, दैवी और आसुरी तो बता दिए ना भगवान ने, क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो भगवान ने बताया। अब इस संसार में भी दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ के अंदर दैवी गुण होते हैं और कुछ के अंदर आसुरी गुण होते हैं। दैवो विस्तर शह प्रोक्त, कि दैवी गुण तो मैंने आपको बहुत विस्तार से, जैसे इतने दिन से हम दैवी गुण ही पढ़ रहे थे ना, 1 से लेकर 3 तक भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत ही डिटेल से बता दिए थे, और भगवान ने बताया कि ये सब दैवी गुण है, इसके अतिरिक्त भी भगवद गीता में बहुत ही दैवी गुणों के विषय में बताया गया। और आज भगवान कह रहे हैं कि आज मेरा मूड क्या हो रहा है, आसुरम पार्थ में शुणु, क्योंकि दैवी विस्तर शह प्रोक्त, प्रोक्त मतलब बता दिया, मैंने पहले ही बता दिया, विस्तार से बता दिया, क्या दैवी गुण, आसुरम पार्थ में शुणु, आसुरम मतलब अब मैं क्या करूंगा, आसुरी हे प्रथापुत्र, मेरे से अभी तुम आसुरी गुणों के विषय में सुनो, यानी कृष्ण कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान आज हमें आसुरी गुणों के विषय में बताएंगे। भगवान क्यों बताना चाहते हैं आसुरी गुणों के विषय में, ऐसे मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आप इस तरह की बातें करोगे ना, आसुरी गुण, नेगेटिव बातें नहीं करो, क्योंकि नेगेटिविटी आती है आपके अंदर, और अगर आप है ना पॉजिटिव बातें करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पर भगवान फिर कह रहे हैं कि मैं ना आपको आसुरी बातें बता रहा हूँ, आसुरी लोगों के विषय में बता। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बचाना चाहते हैं। अब बचाएंगे तभी जब आपको पता ही नहीं होगा आप ऐसा कार्य कर लोगे, वो अगर आसुरी होगा तो वापस आपको बंधन में डालेगा। तो भगवान आपको सावधान करने के लिए बता रहे, एटलीस्ट आपको ज्ञान तो होना चाहिए ना, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित हैं वे मुक्ति के पद पर अग्रसर होंगे। इसके विपरीत जो लोग है ना तमोगुण में रहकर कार्य कर रहे हैं, जिनको नहीं खबर है कि क्या दैवी गुण है क्या असुरी गुण है, और अपनी मर्जी से जो काम कर रहे हैं उनकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान बता तो दे डिटेल से, ऐसा नहीं फिर हम लोग बाद में बोलें कि भगवान कहीं लिखा नहीं था आपने कि ये असुरी गुण है इसलिए मैंने वो वाला काम कर लिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अभी डिटेल से सुन लो कि आसुरी गुण कौन कौन से हैं, और अगर आपको मुक्ति हासिल करनी है तो उन आसुरी गुणों को आपको छोड़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बता दिया इतना इजी वर्ड्स में कि देखो दैवी गुण क्या होंगे, आपको मुक्ति दिलाएंगे। अब इस संसार में दो टाइप के दैवी लोग हैं, कुछ दैवी हैं और कुछ आसुरी हैं। तो उनको समझा कैसे जाए कि ये दैवी हैं और ये आसुरी हैं? तो भगवान तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियर आपको परीक्षण देते हैं कि देखो ऐसे कि वे नियमित जीवन बिताते हैं, यानी कि उनका जीवन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होता है। उनको पता होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए कब सोना चाहिए, किस तरह से घर में रहना चाहिए किस तरह से बाहर रहना चाहिए, हर चीज उनका जीवन रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपनी मति से नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बस उसने रूल बना दिया कि मुझे रोजाना 10 बजे उठना है और वापस से ना रात को तो 2 बजे तक जागना है और ऐसे ऐसे करना है। ये नियम अपने हिसाब से नहीं बनाए। यहाँ पर साफ साफ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं, यानी कि जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है और जैसा विद्वानों ने यानी जैसा भक्तों ने बताया है वही उन्हीं नियमों का पालन करते हैं, अपने नियम नहीं बना देते हैं। उनकी जिंदगी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन कोई मनगढ़ंत नहीं होते बल्कि शास्त्रों के अनुसार होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य निभाए, यह प्रकृति देवी कहलाती है। यानी कि अगर कोई शास्त्रों को पूरा शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको उन आदेशों को फॉलो करके अपने जीवन को बिताता है तो वो दैवी गुण है। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो साफ साफ उत्पन्न होता ही है कि हम तो फिर सारे लोग है ना शास्त्रों को फॉलो नहीं करते क्योंकि शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। आज अपने हमारी कम्युनिटी के लोगों 99% लोगों को पूछो उनको पता भी नहीं होगा कि हमारे शास्त्र का नाम क्या है। अगर हमारे शास्त्र का नाम भगवद गीता है तो उनको पता भी नहीं होगा कि इनके चैप्टर्स कितने हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं और भगवान ने मनुष्य के लिए क्या करने के लिए कहा है, कितने बजे खाओ कितने बजे उठो, कितने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही नहीं है। तो आपको मैं आप ये बात सीधी सीधी बता देती हूँ कि आज के श्लोक से हमें ये पता चलता है कि 99% जो लोग हैं वो आसुरी गुण है उनके अंदर, आसुरी गुण आपको बंधन में डालेंगे। अगर आप बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। और साफ साफ कहा है कि वे शास्त्रों के या और विद्वानों के बताए गए आदेशों के अनुसार ही अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से रहते। और साफ साफ यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। जो प्रामाणिक शास्त्र होते हैं, बहुत सारे शास्त्र होते हैं, कुछ धर्म शास्त्र होते हैं कुछ अर्थ शास्त्र होते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक शास्त्र हैं। और आज मैं आपको ये भी बता दूं जो कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि प्रामाणिक शास्त्र आपके पास अगर है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है जिसके हिसाब से आपको जीवन व्यतीत करना है। सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता ही ऐसा शास्त्र है जो आपको बता सकता है कि आपके जीवन को निर्वाह कैसे करना है, उसको नियमित ढंग से कैसे बिताना है, इसमें हर एक चीज लिखी हुई है। और यदि अगर कोई श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ता है या उसको फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली वो आसुरी स्वभाव में है और उसको बंधन मिलेगा, उसको जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलेगा। मुक्ति की कोई संभावना नहीं है जब तक आप भगवद गीता को नहीं पढ़ते हो, उसके नियमों को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, आगे बताया, जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानते हैं और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। शास्त्र शास्त्र, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान ने वेदव्यास जी का अवतार लेकर ये जो शास्त्र लिखे हैं ना, वो ऐसे ही सजाने के लिए नहीं लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं ताकि आपको भवबंधन से मुक्ति मिल सके। शास्त्र के विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। कसौटी का क्या मतलब है, मतलब परख कैसे कर सकते हो आपको क्या जैसे किसी को अगर आपको परखना होता है कि वो दैवी गुण में है या आसुरी गुण में है, तो आप शास्त्र के अनुसार उसको परख सकते हो कि शास्त्र के अनुसार वो जीवित जीवन बिता रहा है या अपने मनमाने ढंग से बिता रहा है। अगर वो शास्त्र को फॉलो कर रहा है तो ही वो दैवी गुण उसके अंदर है, अन्यथा वो आसुरी गुण वाला है। और पहले ही यहाँ पर आगे लिखा है, वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा आसुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। प्रजापति ब्रह्मा जी ही सब जो है ना, सबका कारण है उत्पन्न करने का। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। अब आपको संसार में जो भी मिल रहा है, जिसको भी आप जानते हो, अगर उसकी आपको कोई कसौटी है ना कि वो शास्त्र के अनुसार अगर वो जीवन बिता रहा है तो वो दैवी गुणों का मालिक है। अगर वो शास्त्र को नहीं मानता है और अपने मन माने ढंग से अपने कार्य करता है तो वो आसुरी गुण उसने विकसित किए हुए हैं। बस ये एक कसौटी है। इसके बाद श्री प्रभुपाद ने इतनी अच्छी बात बताई, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई नहीं मतलब शास्त्र अगर नहीं समझ रहा है, शास्त्र को नहीं पढ़ रहा है, शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर आप फौरन से समझ जाओ कि वो आसुरी गुण वाला है। शास्त्र को समझना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो शास्त्र में लिखे हैं वही फॉलो करना ही इंसान का परम धर्म है। ये मनुष्य देह जब आपको मिला है ना, मैं आपको पहले ही बताया कि देखो 84 लाख योनियों में 83,99,999 मतलब 83,99,999 योनियां जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोग योनी होती है। उनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको तो बस वो जीवन मिला है, वो उसको टाइम पीरियड कंप्लीट करना है और बाद में दूसरा जीवन करते 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 आखिर में जब आपको मनुष्य देह मिलता है ना, तब आपके पास ये चांस आता है कि आप शास्त्र पढ़ के अपने अंदर दैवी गुण विकसित करो और फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाओ। बस ये आपको मनुष्य देह में ही ये चांस मिलता है और दुर्भाग्य है उन मनुष्यों का जो संसार में जन्म लेते हैं मनुष्य बनकर और जीते हैं पशुओं की तरह। द्विपद पशु ऐसे शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य देह ले लेता है, मनुष्य देह जिसको मिल जाती है इतने इतने जन्मों के बाद और वो शास्त्र को अध्ययन नहीं करता है तो उसको द्विपद पशु कहते हैं। यानी कि अभी वो 84 लाख योनियों में चार चार पांव वाला जानवर बन के आया ना, अभी संसार में वापस आया इंसान बनकर, अब दो पांव वाला जानवर बन गया क्योंकि कार्य तो वही कर रहा है, शास्त्र तो नहीं पढ़ रहा है और बोलता है कि भाई हमारे साथ भगवान ऐसे करते हैं हमारे साथ। अरे भाई, भगवान ने लिख लिया है कि तुमको क्या करना है, उसको फॉलो करो, तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो करो, तुम स्टक हो जाओगे, तुम उसी हिसाब से तुम मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ पर आके आर्ग्यूमेंट्स भगवान के साथ सामने आके करते, खड़े होके कहते भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसलिए किया तो कि आपने कर्म ही ऐसे किए थे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 7 चैप्टर 16 श्लोक नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण आसुरी लोगों के विषय में बताते हैं। क्योंकि पहले 6 में बताया ना कि दैवी गुणों के विषय में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आसुरी पार्थ मैं सुनो, अब क्या करूंगा, खाली आसुरों के बारे में बताऊंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये चीजें आसुरी हैं और इनको मुझे छोड़ना है ताकि मैं मुक्ति की राह को पकड़ सकूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 7 में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम का मतलब होता है ठीक से कर्म करना, बिल्कुल जो परफेक्ट कर्म करते हैं ना उसको बोलते हैं प्रवृत्ति, और निवृत्ति किसको बोलते हैं अनुचित ढंग से कर्म करना। आगे भगवान कहते हैं उनको न मतलब कभी नहीं, जना मतलब जो लोग विदुर आसुरा, आसुरा मतलब जो आसुरी गुण वाले लोग होते हैं, वो न विदु मतलब नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं कि क्या कर्म ठीक तरह से, काम किस तरह किया जाए और कौन सा काम है जो हम अनुचित ढंग से कर रहे हैं। उनको क्योंकि शास्त्र पढ़ते ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन से कार्य, ऐसा बस अपने जीवन को बिता रहे होते हैं कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह। उनको पता ही नहीं होता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें उनके गुण बता रहे हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि सही काम कौन सा है गलत काम कौन सा है। न शौचम चापी, न शौचम नापी चाचारो। शौचम का मतलब होता है पवित्रता, कोई पवित्रता नहीं होती है उनके घर में। नापी मतलब ना ही चाचारो, उस आचरण नहीं होता, यानी कि उसके आचरण में कोई शुद्धता नहीं होती है, पवित्रता नहीं होती है। न सत्यम तेषु विद्यते। सत्यम का मतलब होता है सत्य, विद्यते मतलब होता है, वो सत्य भी नहीं होता है। सत्य का मतलब ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो वो आपने देखा है वो सत्य है। सत्य का मतलब होता है जो शास्त्र में लिखा है वह सत्य है, जो शास्त्र कहता है वही प्रमाण है। अगर शास्त्र का प्रमाण दिए हुए आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो सत्य नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आप ये चाटुकारी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं कि भाई हाँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग आज धर्म पर बात करते हैं, हैरत होती है, धर्म की बात वो कर रहे होते हैं और अपने लफ्जों में कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है आप लोग इस तरह करो। कुछ कुछ लोग बताते हैं कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हृदय में भगवान बैठा हुआ है, आप वो खुद ही आपको प्रेरणा दे रहा, खाने पीने में आपको कोई भी अपने रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, गोश्त खाओ, मछलियां खाओ, शराब पियो, सिर्फ आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। नानत है ऐसी सोच पर, हृदय पवित्र होगा कैसे जब हम लोग ऐसी चीजों का सेवन करेंगे। साफ साफ भगवान कहता है, भगवान ने शास्त्र में साफ साफ कहा है यदि आप तमोगुणी आहार का सेवन करोगे तो आपको पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका हृदय, जो आप खा रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आपकी फ्रेंड सर्कल है, उसके हिसाब से आपका आचरण होता है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया कि यदि आपका आचरण साफ नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, तो वो आसुरी गुण वाले लोग होते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनुवाद, जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। प्रभुपाद की जय हो। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संस्थाएं होती हैं, यानी कि कुछ जो भी सभ्य मान होती है ना, सिविलाइज जो भी जो सोसाइटीज, जो सिविलाइज सोसाइटीज होती हैं, आचार संस्थाएं जो भी होती हैं, उनमें कुछ न कुछ रूल्स होते हैं जिनका प्रारंभ से ही पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत ही सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते हैं और वे असुर समझे जाते हैं। यानी कि जो आर्य होते ना, भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया ना, अनार्य जुष्टम, यानी कि भगवान ने अर्जुन को बोला था आर्य लोग जो शास्त्रों को मानते हैं, यानी कि जो सभ्य लोग होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, वो जो शास्त्र होता है उसको मानते हैं। तो शास्त्र में लिखा हुआ है क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, तो अर्जुन को समझा रहे थे भगवान कि अनार्य जुष्टम, जो ये आप कार्य कर रहे हो ना, वो आर्य लोगों को शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि वो आर्य लोग इसको बहुत ही, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते हैं वे असुर हैं। साफ साफ डेफिनेशन है, जो शास्त्र को मानता है वो दैवी गुण उसके अंदर है, और जो शास्त्र को नहीं मानता है, पढ़ता ही नहीं है, तो मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, तो समझ लो कि वो आसुरी है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आसुर गण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना ही उनमें उनके पालन का करने का कोई प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जो शब्द है ना, इसका मतलब है कि वो जानते भी नहीं है ठीक तरह से, क्योंकि ठीक तरह से कर्म करना का मतलब यही है जो शास्त्र में लिखा हुआ है, उनको पता भी नहीं होता है। और अगर कभी उनको कोई बता भी देता है ना कि देखो शास्त्र में ये लिखा हुआ है, तो वो उसके अंदर उनको मानने में कोई भी रुचि नहीं होती है कि मैं ये मानूं कि चलो ठीक है शास्त्र में लिखा हुआ है इसको फॉलो करूंगा। नहीं, मतलब भले किताब में लिखा हुआ है कौन मानता है, हमें अपनी मर्जी से जीना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते हैं, और जो थोड़े लोग जानते हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उन्हें ना तो वैदिक शास्त्रों या आदेशों में कोई श्रद्धा होती है और ना ही उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं भले बार बार, उनको ऐसा लगता है कि शास्त्र में लिखा हुआ है ना जो आप जन्म इसके बाद ये वाला जन्म लोगे, इसके बाद ये वाला जन्म लोगे तो आप ऐसे कार्य करोगे तो ये ऐसा होगा, इस बात पे यकीन ही नहीं करते। उनको बताते तो बोलते नेक्स्ट जन्म किसने देखा है, अगर नहीं देखा है, अगर आप शास्त्र को नहीं मानते हो तो ठीक है फिर देख लेना, फिर नेक्स्ट जन्म में जब होगा। आज भी श्रील प्रभुपाद ने सुबह को बताया था ना कि अगर मछली बननी है भगवान, अगर आप स्विम करने का इतना शौक है तो मछली बना देंगे, ठीक है करो। तो भगवान की प्रकृति है, आज देखकर मनुष्य नहीं देख मतलब समझने की कोशिश नहीं करता। इतना दुख मिल रहा है समाज को, वो सब हमें दिखाने के लिए कि इसने पहले शास्त्र को नहीं फॉलो किया तो देखो आप इसको कितना दुख मिल रहा है, आप भी अगर नहीं फॉलो करोगे। वरना भगवान अनजस्टिस तो नहीं करते ना, कोई लोग बोलते हैं दूसरा जन्म किसने देखा, आंखें खोलो आज ही देख लो दूसरा जन्म। आज इस संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव नहीं, किसी की आंखें नहीं, कोई इतने गरीब हैं कि वो खा नहीं सकते, रास्ते में देखो पड़े हुए होते हैं। तो क्या अगर ये दूसरा जन्म नहीं है, ये पहला जन्म है, सिर्फ अब एक ही जन्म होता है, तो फिर क्या भगवान इतना अनजस्टिस कैसे कर सकते हैं? किसी को इतना सुख दे रहे हैं, किसी को इतना दुख दे रहे हैं, ये सब हमारे कर्मों का अनुसार हो रहा है। और कर्म है जो गलत कर्म होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं होते हैं, वो हमेशा हमें पनिशमेंट देते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी को कहते हैं असुरगण ना तो बाहर से ना ही भीतर से स्वच्छ होता है, पवित्र नहीं होता, उसके अंदर पवित्रता नहीं होती है। बाहर की पवित्रता क्या है आगे श्री प्रभुपाद जी बताएंगे। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करे, दंत मंजन करे, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के प्रति, ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो पवित्रता ये बेसिक चीज है कि आपको पवित्र होना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर दैवी गुण आए तो बाहर से भी, यानी कि अच्छा साफ सुथरा स्नान करना चाहिए, सुबह सवेरे भगवान का नाम लेना चाहिए। बस नाम लेने से आपका हृदय पवित्र होगा और स्नान आदि से आपका शरीर पवित्र होगा। तो पहली कसौटी कि आपको पवित्र होना चाहिए, अगर पवित्र नहीं होंगे तो शास्त्र समझ में भी नहीं आएगा, भले किताब पढ़ लो पूरी समझ में भी नहीं आएगा। तो जब तक जप नहीं करेंगे ना, जिसका जप अच्छा नहीं होता है ना, उसको शास्त्र समझ में भी नहीं आता है। तो हृदय पवित्र होना चाहिए और चित्तो दर्पण मार्जनम हरि नाम संकीर्तनम, चित्त को साफ करने के लिए सिर्फ एक ही साबुन है, भगवान का पवित्र नाम। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए अनेक विधि विधान है, जैसे मानव संहिता जो मानव जीविता का अधिनियम है। अधिनियम यानी कि मनु संहिता एक ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ पता लिखा होता है कि क्या करना चाहिए मनुष्य को। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। जो हमारे हिंदुओं में जो होते हैं ना, मनु संहिता के अनुसार ही होते हैं कि भाई आप इस दिन ये कार्य करो, आखा तीज और ये उत्तरायण, ये जो भी होते हैं ना करने के, जो हम लोग पालन कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है ये कहाँ से आया, लेकिन ये शुरू से ही जैसे बच्चा पैदा होता है मुंडन कराते हैं, नामकरण करते हैं, फिर या वो जनोई करते हैं, ये सब मनु संहिता में लिखा हुआ। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आज भी हिंदू समाज जो है मनु संहिता का पालन कर रहा है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई है वो अलग बात है। क्या अभी उसी में ही वो ये जनोई पहनाते हैं और उसमें ही गोश्त वगैरह क्या है ना बलि खिलाते हैं सबको, नॉन वेजिटेरियन। नामकरण, भगवान के सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, षष्ठी पूजन किया जाता है और हैरत होती है कि उसमें खाने के लिए दावत में गोश्त खिलाया जाता है, वाइन पिलाई जाती है। तो ये बिगड़ गई हालत, क्योंकि वो असुरी स्वभाव विकसित कर दिया ना उन्होंने, शास्त्र के अनुसार उनको बस खाली पता है ये कार्य करना है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता। मनुसंहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाए, यानी कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान नहीं, वो स्त्री जो है वो छुपा के रखने की चीज है। छुपा कर रखने की चीज मतलब कि जैसे आपके पास अगर कोई डायमंड होगा तो उसको रोड पे फेंक दोगे कि हाँ ठीक है, भले रोड पे पड़ा हुआ हो या ऐसे अपने गली के बाहर या फिर दरवाजा खोल के उस पे रख दोगे। अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव चीज है तो आप क्या करोगे, उसको संभाल के रखोगे ना। तो इसी तरह से स्त्री यानी जो फीमेल है वो उसको है ना स्वतंत्रता प्रदान करनी, क्योंकि वो बहुत ही संभाल के रखने की चीज है, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, उसको रोड पे खड़ा नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के घर पे रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखना चाहिए, वे तो बालिकों के समान है, यानी कि वो बहुत ही इनोसेंट होती हैं, जो लेडीज होती हैं बहुत इनोसेंट होती हैं। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वे दास बनकर रखे जाते हैं। लेकिन इसका अभी देखो, हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देते ना, आप अपनी छोटी बच्ची को कभी बोलोगे कि हाँ जिधर जाना है जाओ, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आपको पता है ये बहुत हमें संभाल के रखने वाली चीज है। मेरे बच्चे को गलत रास्ता ना मिल जाए, कहीं गलती ना हो जाए उससे, तो हर दफा हर टाइम पर हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि नहीं जाओ, आप इधर नहीं जाना चाहिए, आपको प्रेशियस गिफ्ट है ये हमारे लिए भगवान के। तो फिर हमें लेडीज को बहुत ना स्वतंत्रता शास्त्र कहता है नहीं देनी चाहिए, लेकिन आसुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन इसमें संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आज जो लड़कियां लेडीज जो हैं वो बाहर जाती हैं, कारोबार करती हैं, ये लेडीज के लिए नहीं है, ये नहीं करना होता है, उनको घर पे रहना चाहिए और घर में जो है अपनी सेवाएं करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि आप धन अर्जित करते 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 अपने जीवन का सर्वनाश करो। इसमें धर्म होता है, काम कामे लाभाय जीवते, इच्छा केवल इतनी करनी है कि आप जी सको और जी कर पवित्र नाम का स्मरण कर सको। और जो कमाता है ना पुरुष, अगर पुरुष अपने नियमों का पालन करके कमा के आता है ना, तो वो जो कमा कर लाएगा ना, अगर स्त्री के अंदर उसने अगर शास्त्र पढ़े होंगे तो उसी में से गुजारा कर सकती है, उसको जाकर बाहर जाकर अपने ना कारोबार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन इस संसार में सामाजिक स्थिति में इससे सुधार भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि ज्यादा धन अर्जित करने से आपके अंदर इतने सुधार जाएंगे, आचरण अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्त्री को हमेशा उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक्चुअली अ वुमन शुड बी गिवन प्रोटेक्शन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। शी शुड बी गिवन प्रोटेक्शन बाय हर फादर इन द यंगर डेज, by her husband in the youth and by the grown up sons in her old age. बाल्यकाल में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में संतान के संरक्षण में होना ही यही है मनुसंहिता, यही है आचरण के उनके प्रोटेक्शन में होना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुसंहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अति रंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न किया कर दिया है, अतएव वह विवाह एक कल्पना बन चुका है। मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी है उसने औरतों, ये जो लेडीज है, उसको एक कृत्रिम आर्टिफिशियली तरीके से नुमाइशी नजरिया मस्नोई तौर पर वाजे कर दिया, यानी कि एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको ये बताया कि ये तरीका है, तुम जाओ मार्केट में जाओ काम करो। जैसे मर्द हैं आप भी ऐसे, जैसे बोलते हैं ना आप लेडीज भी मर्दों के साथ साथ कार्य करें, तो यहाँ पर शास्त्र मना करता है इसको। अतएव आगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है, बस एक कल्पना रह गई है, विवाह का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि पत्नी जो है वो पत्नी का काम होता है पति की सेवा करना, घर पे रहना, बच्चों की सेवा करना, लेकिन अब बस ये कल्पना बन चुका है। एक स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रही, यानी कि उसका इखलाक की जो होना चाहिए ना, उसके अंदर जो आचरण होने चाहिए वो भी अच्छे नहीं रहे। अतएव आसुर गण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। लेकिन अगर आज आप संसार में जाके बोलोगे ना कि भाई स्त्रियों को नहीं निकलना चाहिए, उनको घर पे रहना चाहिए, तो वो क्योंकि आसुरी लोग होते हैं तो शास्त्र की बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका आसुरों का स्वभाव ही यह है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्र ने बताए हैं और जो महर्षियों ने बताए हैं उनको वो फॉलो नहीं करते, तभी तो वो असुर हैं। तो वो इन चीजों को नहीं मानते हैं, अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, उन मतलब बहुत ही दुखदायक उनकी स्थिति है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी मनमानी के हिसाब से करते हैं, तो आगे जाकर उनको जन्म जन्म भटकना पड़ेगा, तो उनकी सामाजिक स्थिति अत्यधिक गमनाक है, दुखदायक है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।